भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। प्रसंग ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वह सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार शब्द अर्थात प्रसा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन प्रसा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखा कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ तथा प्रसा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। श्लोक संख्या 26। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ सिद्धकों को भी देखा। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों भीष्म तथा सोम्र जैसे पितामहों द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं शल्य तथा चक्री जैसे मामाओं दुर्योधन जैसे भाइयों लक्ष्मण जैसे पुत्रों अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृष्णवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। और फिर आपका श्लोक है जो बोर्ड को दिखाई हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा करेंगे दो पुरुष भक्तों की तरफ से बोले और दो माताओं की तरफ से उच्चारण करेंगे श्लोक बाद में। आयुक्त प्राकृत शब्द बोली कि नहीं अध्याय गलती हुआ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ती मम छात्राणि मुखं च परिशुष्यति दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ती मम छात्राणि मुखं च परिशुष्यति दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बोलिए देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सब पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो ईश्वरीय गुणों से भिन्न होता है। स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था तो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युधा भी मुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सभी संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था अभी तो वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अभी तो हृदय की कोमलता के कारण थे जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरः हरा भक्तस्य कतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलन माया के द्वारा वश ही आकर्षित होता है। भागवत 5:18-12। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रथम अध्याय है इस अध्याय का नाम ये है, अगर महाभारत में देखें, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, तो इस कारण से ये योग है, किसी ना किसी तरह से भगवान से हमें जुड़ना है। पहले हम अपना विचार प्रस्तुत करें या सेवाएं करें या कुछ अर्पित करें। तो अर्जुन यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान कृष्ण ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान सुन ही रहे हैं, देखिए भगवान तो कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो सामने देखो। तो भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इस अध्याय में, भगवान कृष्ण कुछ बोला नहीं, पहले अध्याय में चुपचाप सुनते रहे। तो ये एक लीडर का गुण है, एक नेता का गुण है कि वो सबसे पहले सुनता है, बड़े ध्यान जो सुना जाते हैं उनको सुनता है, बड़े ध्यान उनकी समस्या को सुनता है, तो उसके हिसाब से फिर वो उनको सुझाव देता है या फैसला सुनाता है। तो ये बहुत अच्छा गुण है भगवान में, भगवान से ही सारे गुण अच्छे गुण आए हैं, तो भगवान में गुण पाए जाते हैं कि भगवान जो है एक बद्ध जीव को, यानी अर्जुन एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं ऐसे बद्ध जीव को, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस अर्जुन जो है यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, तो सब जानते हैं। तो मित्र होने के नाते कृष्ण के समक्ष वो अपने हृदय की बातें कह सकते हैं, अपने से कोई वरिष्ठ होता है, अपने से कोई बड़ा होता है, उनको सब कुछ बताने में थोड़ा सा संकोच होता है, भय होता है। अपने से वरिष्ठ भक्तों को हम सब कुछ बता नहीं पाते है कि नहीं, घर में भी माता पिता को सब कुछ बता नहीं पाते, लेकिन अपने मित्रों को सब कुछ बताते हैं, मित्रों से दिल खोल के बात करते हैं, मन में क्या बातें हैं सारी बात बताते हैं, और अपने से छोटे हैं उनसे भी सब कुछ हम लोग नहीं बताते। उसमें फिर मान और सम्मान और मान और अपमान की चिंता रहती है कि छोटों को पता चल गया हमारे बारे में तो फिर संबंध जो है हमारा टूट जाएगा, उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। तो लेकिन जो मित्र होते हैं उनको सब बताया जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर के मित्र, अर्जुन के मित्र कृष्ण हैं, कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं। श्री गुरु गोस्वामी ने उपदेशावल बताया है, ददाति प्रतिगृणाति भूयमाख्याति पृक्षति भूते भोजते चेव सर्वदम प्रीति लक्षणम। ददाति मतलब भेंट उपहार देना, दान प्रतिगृणाति स्वीकार करना, उपहार को स्वीकार करना, भेंट स्वीकार करना ताकि इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो इसका ददाति प्रतिगृणाति होता है भक्तों के बीच में, इसको प्रीति लक्षण कहते हैं, प्रेममय आदान प्रदान भक्तों के बीच में होना चाहिए। वैसे समाज में भक्तों के समाज में प्रीति लक्षण है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, इन लक्षणों के द्वारा पता चलेगा। तो ये लक्षण बताएंगे कि भक्तों में आपस में प्रेम है कि नहीं। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की बातों को बताना, अपने मन की बातों को बताना, किसको बताना, जिस पे हमें विश्वास है, जिस पे हमें श्रद्धा है। स्वाभाविक है मित्र को जो है सब कुछ बताना चाहेंगे, सबसे श्रद्धा जो है वहाँ पर खुल के प्रकट होती है और उन्हीं को बताना चाहेंगे। और इसी तरह से गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो पूछना, और इसी तरह से बहुत ही गुह्यतम रूप में पूछना जिज्ञासा बन भूमते भोजते क्षेम प्रसाद परोसना और प्रसाद ग्रहण करना। तो ये छह लक्षण हैं जो भक्तों के बीच में पाए होने चाहिए, होने चाहिए मतलब पाए जाते हैं भक्तों के बीच। तो यहाँ पर अर्जुन जो है एक बात बता रहे हैं, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण, कृष्ण शब्द का उपयोग किया है, भगवान के नाम का उपयोग किया है, कृष्ण जो है सबको आकर्षित करने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। तो ये बताया गया है कर्षति, कर्षति इति कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण यानी कि जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है, सबको जो आकर्षित करते हैं वो कृष्ण। जब भगवान कृष्ण कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे थे और कंस के कारागार में पहुंचे थे, रंगशाला कारागार में नहीं रंगशाला में जहाँ पर युद्ध का आयोजन किया गया ताकि सब लोग देख सके, ब्रजवासी भी वहाँ पर आए हुए थे, मथुरावासी भी थे, सब थे वहाँ। कुबिया पीड़ हाथी का वध किया था भगवान ने, और वध करने के बाद उसका जो हाथी का जो दांत है वो कंधे पर रखकर वो रंगशाला में प्रवेश किए, और वो जो दांत है हाथी का दांत है वो खून से सना हुआ था, लेकिन बिल्कुल भय नहीं था भगवान का। निर्भीक होके जो है कृष्ण बलराम उस रंगशाला में प्रवेश किए, और वहाँ पे तरह तरह के लोग थे जिन्होंने कृष्ण को अपने भाव के अनुसार भगवान गीता बता रहे हैं, ये था नाम प्रपद्यंते तां सतय भजाम, कि जिस भाव से हम भगवान के पास जाएंगे उसी भगवान भाव से जो है भगवान भी हमें देखते हैं। तो दस तरह के लोग थे, दस प्रकार के लोग थे जिन्होंने कृष्ण को अलग अलग रूप में देखा। तो पहला बता रहे हैं रौद्ररस, रौद्ररस वहां पर पांच प्रकार के जो थे क्या कहते हैं उसको मलयुद्ध करने वाले योद्धा थे, इनका नाम बताया गया है चाणूर मुस्तिक कूट शल और तोषल, ये पांच उनके मलयुद्ध करने वाले थे योद्धा। और कंस ने उनको बोला था कि कपट पूर्वक जो है आप इनके साथ मलयुद्ध करते हुए कृष्ण को जो है आप मार दो, इस तरह से कंस ने उनको आदेश दिया हुआ था। और उन्होंने क्या देखा, इन पहलवानों ने क्या देखा कि कृष्ण बलराम का जो शरीर है वो वज्र के समान है, देखने में तो लग रहा था कि फूल जैसे हैं ये कृष्ण बलराम, इनको तो हम ऐसी मसल देंगे जैसे फूल मसलता हुई, लेकिन जब उनको छुआ उन्होंने कृष्ण बलराम को मलयुद्ध जो प्रारंभ हुआ तो उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम का जो शरीर है तो वज्र के समान है, और वज्र के ऊपर पत्थर फेंका जाए तो वज्र को कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से भाव से तो रौद्र रस के द्वारा वो आकर्षित हुए कृष्ण से, कौन ये योद्धा जो थे चाणु मुष्टिक इत्यादि। दूसरा बताया गया यहाँ पर अद्भुत रस, अद्भुत रस से मथुरावासी जो हैं उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा, बहुत ही अद्भुत रूप देखा उनका, उनकी सुंदरता को देखा, उनके जो उनके शरीर दिव्य शरीर की कांति को देखा, दिव्य शरीर की कांति को देखा, और उनका जो वस्त्र है उनका सुंदर वस्त्र और उनके जो चलने का ढंग है इससे वो बड़े प्रभावित हुए और अद्भुत रस का उन्होंने आस्वादन किया, अद्भुत रूप का दर्शन जब किया कृष्ण के, अद्भुत रूप का दर्शन किया तो बड़े प्रभावित हुए और अद्भुत रस का आस्वादन किया, अद्भुत रस के माध्यम से वो श्री कृष्ण से आकर्षित हुए। तो तीसरा उदाहरण श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जो है मथुरावासिनी जो युवतियाँ थी वो बड़ी प्रभावित हुई श्री कृष्ण के सौंदर्य से, श्री कृष्ण के सौंदर्य से बहुत आकर्षित हुई, यहाँ तक कि कुब्जा भी बड़ी प्रभावित, मथुरा में ही लीला हुई थी कि कुब्जा का उद्धार किया था परम भगवान श्री कृष्ण ने। और ये जो युवतियाँ थी ये कृष्ण को जब देखें तो उनको साक्षात कामदेव के रूप में नजर आए, कृष्ण अलग अलग रूप में कृष्ण नजर आ रहे हैं सबको, और बाद में कुब्जा का भी उद्धार किया, कृष्ण उनके घर पे गए और सूख गया तो शरीर उन्हें ठीक कर दिया। तीसरा हास्य रस, हास्य रस कृष्ण के सखा भी वहाँ पर मौजूद थे, कृष्ण के सखा भी वहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने जब देखा तो उनको बड़ी हंसी आ रही थी। उनको क्या हंसी आ रही थी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये सब जो बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं और कितने सारे लोग जो हैं कृष्ण बलराम को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, ये तो ग्वाला है, हमारे साथ खेलता है वृंदावन में, हम कितनी बार तो इसको पटकते हैं और ये यहाँ पर मजबूत करेगा इसको तो चुटकी में हरा लेंगे, हमने कितनी बार तो इसको कबड्डी में हराया, इसको मुर्गी बनाया है तो इस तरह लोग हंस रहे हैं, सखा लोग जो है क्योंकि वो सज्जन मानते हैं, कृष्ण को अपने बराबर मानते हैं, तो उनको ये ज्ञात ही नहीं कृष्ण पर भगवान है। देखिए उनका प्रेम, देखिए भगवान से कितना अटूट प्रेम है सखाओं का, कि वो जानते नहीं कि कृष्ण परम भगवान, ये ब्रजवासियों की खूबी है, उनके पास क्या है केवल प्रेम है कृष्ण के लिए। तो इस तरह से ये हास्य रस के द्वारा सखा वो प्रभावित है, आकर्षित है कृष्ण से। और पांचवा उदाय वीर रस, वीर रस में यहाँ पर उन्होंने कृष्ण राजाओं ने, जिनको राजाओं ने देखा कृष्ण बलराम को देखा और ये राजा लोग आए हुए थे, उनको निमंत्रण मिला था उनको भी, तो वो सब आए थे देखने के लिए, ये मलयुद्ध देखने के लिए आए थे। कृष्ण बलराम को जब देखा उन्होंने कि किस तरह से कुल्य पीड़ का वध करके जो है निर्भीक होकर जो है वहाँ पर चले आ रहे हैं, तो इस वीर रस का आस्वादन किया, ये देखा कि कंस ने सारी व्यवस्था की है, इतनी सारी व्यवस्था की इनको मारने के लिए, बचपन से ही मारने लगे, छठे दिन से ही जो है उनको मारने का प्रयास किया गया, कंस ने नाना प्रकार के राक्षस भेजे, तो राजा लोग जो है बहुत प्रशंसा कर रहे थे इसकी। और उनके क्या भाव आए उनके हृदय में, वीर रस का भाव आया, वीर रस का आस्वादन कर रहे थे, वीर रस के द्वारा वो जो है कृष्ण से प्रभावित हो रहे थे, कृष्ण से आकर्षित हो रहे थे। तो इस प्रकार से वीर रस का आस्वादन किया गया। और करुण रस, करुण रस में करुणा जागृत हुई, माता यशोदा नंद महाराज के अलावा देवी की वसुदेव जी के अलावा वहाँ पर और भी कई स्त्री पुरुष थे या और भी कई वृद्ध वहाँ पर और भी कई गृहस्थ परिवार बैठे हुए थे जिनके हृदय में उसी तरह का उनके प्रति वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ, करुण रस जागृत हुआ। क्या करुण रस जागृत हुआ, बड़े आकर्षित हुए कृष्ण से इस भाव में कि ये क्यों क्रूरता इनके ऊपर दिखाई जा रही है, ये कितने कोमल हैं, इनका शरीर कितना कोमल है, ये कैसे युद्ध कर पाएंगे, क्यों इस प्रकार से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह से उनके हृदय में करुणा की भाव आए भावना आई, दया की भावना आई और इस करुण रस के द्वारा वो कृष्ण से आकर्षित हो रहे थे। भयानक रस, भयानक रस का मतलब ये है कि जिस तरह से वसुदेव देवकी विशेष रूप से देवकी बड़ी भयभीत थी कंस से, कि कंस बार बार एक एक करके जो है बच्चों को मारा जा रहा था और लगभग 6 बच्चों को तो बिल्कुल ही मार दिया था, तो देवी जिस तरह से भयभीत थी इसी तरह से कंस भी जो है कृष्ण से भयभीत, कंस भी कृष्ण से भयभीत था। कंस ने कितना अत्याचार किया था, ब्राह्मणों को तंग किया उसने, कितने सारे जीवात्माओं को तंग किया, सबके अंदर भय उत्पन्न किया हुआ था कंस ने, आज वही भय उसको उत्पन्न किया जा रहा है उसके हृदय में कृष्ण के द्वारा। कृष्ण उसको बड़े भयानक लग रहे हैं, काल रूप की तरह लग रहे हैं, मृत्यु साक्षात मृत्यु यमराज भी खड़े हैं ऐसा लग रहा था कंस। देखिए एक ही रंगशाला में अलग अलग जो वहां पे भक्त बैठे हैं भगवान किस तरह से देख रहे हैं, एक ही कृष्ण को देख रहे हैं, सब लोग अलग अलग भाव में देख रहे हैं और भगवान भी वैसे दिखाई दे रहे हैं उनको, भगवान भी वैसे उनको दिखाई दे रहे हैं। विभत्स रस, विभत्स रस के हैं वहां पर कई ऐसे मूर्ख लोग भी थे जो कृष्ण का उपवास कर रहे थे या कृष्ण से प्रसन्न नहीं थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण जो है अशुचिता का या सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, कुबलिया पीढ़ का इन्होंने बंद कर दिया और हाथी के जो है दांतों को लेकर ये रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं जो खूनों से सना हुआ है, और यहाँ तक कि जो है इन्होंने राजा जो हमारे राजा महाराज हैं कंस उनका भी ठीक से आदर नहीं किया है, ठीक सीधे ही रंगशाला में आ गए हैं युद्ध करने के लिए, और उस यज्ञ में जो धनुष की पूजा होनी थी उस धनुष को भी इन्होंने तोड़ डाला है, तो ये ठीक नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ से आ गए थे, इस प्रकार के मूर्ख लोग भी थे जो इस तरह से कृष्ण को इस तरह से भी देख रहे हैं। तो कृष्ण को किस तरह कैसे कैसे लोग कृष्ण से आकर्षित होते हैं, इसका आकर्षित होने का मतलब ये समझिएगा क्या मतलब है। आकर्षित होने का मतलब ये है इन रसों के द्वारा ये जो भक्त थे या जो ये लोग जो लोग थे वहां उपस्थित थे, ये कृष्ण का चिंतन कर रहे थे लगातार इस भाव में। जैसे उनको कृष्ण दिखाई पड़े निरंतर चिंतन शुरू हो गया उनका, इस तरह से सोचते रहे, इस कारण से वो आकर्षित ऐसे वो आकर्षित हुए। आकर्षित होने का मतलब है कि आप किसी आकर्षित होते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं, तो इस तरह से कृष्ण से इतने आकर्षित हो गए कि इस रस में इस रस के द्वारा वो कृष्ण से आकर्षित थे। तो और शांत रसदायक क्योंकि योगी लोग भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो उनको लगा कि तीनों प्रकार के साप हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश, ये सब क्लेश दूर हो गए हैं, हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, हमें भव बंधन से भव सागर से छुटकारा मिल रहा है, और कृष्ण को परम तत्व पर ब्रह्म के रूप में देख रहे थे। कुछ योगी लोग आज दास्य रस ऋषि वंश के लोग जानते थे कि कृष्ण स्वामी हैं, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, और वो भी ये भी जानते थे कि भगवान ने ही आज्ञा दी थी वसुदेव जी को कि उनको मथुरा से गोकुल ले जाया जाए। तो इस तरह से फिर वो सदैव कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करना चाहते थे, जैसा कृष्ण कहेंगे वैसे हम करें। तो वो भी ऋषि वंश के लोग जो हैं वो दास्य रस का आस्वादन कर रहे थे और इस तरह से कृष्ण से आकर्षित थे। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन की जो आसक्ति है उनके अपने रिश्तेदारों से ये बताया गया। पहला लक्षण क्या बताया है जो उनके शरीर में दिखाई पड़ा, शरीर में कंपन हो रही, क्यों रही जिसमें कहते हैं, और दूसरा क्या बताया है मुंह सूखा जा रहा था, उनका मुंह सूखा जा रहा था और शरीर उनका कांप रहा था, भय के कारण नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं उनके हृदय की कोमलता के कारण, उनके हृदय में जो दया थी उस कारण से उनका शरीर कांप रहा था, उस कारण से जो उनका मुंह सूखा जा रहा था। प्रभुपाद कहते हैं ये भक्त का लक्षण कि उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। अपने योद्धाओं को भी जब अपने यानी कि प्रतिद्वंद्वियों को भी देखता है, दुश्मनों को भी देखता है, शत्रुओं को भी देखता है, तो शत्रुओं के ऊपर भी दया आती है भक्त को। अजात शत्रु शांत, ये लक्षण है भक्त का कि वो किसी से एक वैर भाव नहीं रखता है, किसी से एक द्वेष भाव नहीं रखता है, सदैव दूसरों के प्रति दया की भावना रखता है। तो ये हमें सीखना है इस भगवदगीता से कि हमें भी इसी प्रकार का भाव रखना चाहिए, कोई किसी तरह से भी हमसे वैर करे, हमसे दुश्मनी करे, लेकिन हमें उसके प्रति दया की भावना दिखानी चाहिए। दुख होना चाहिए कि क्या कारण ही ये मुझसे वैर कर रहा है, मुझसे द्वेष कर रहा है, मैंने तो उसके बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं, इस तरह से दया उसके पास उसके ऊपर आनी चाहिए। लेकिन द्वेष का बदला द्वेष से दिखाएंगे तो नुकसान किसको होगा, हमें होगा। और उस भक्त उस व्यक्ति की जो बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां हमारे भीतर भी आने लगी। लेकिन अर्जुन के हृदय में दया है, कोमलता है, उनका हृदय बड़ा कोमल है, सॉफ्ट हार्टेड है बिल्कुल। भगवद गीता के 16 अध्याय के आप देखेंगे, 16 अध्याय में वहां पर पहले 3 श्लोकों में भगवान ने दिव्य गुणों का वर्णन किया है, देवी आसुरी जो गुण है उसमें देवी गुणों का वर्णन किया है पहले 3 श्लोकों में, और 26 गुणों का वर्णन किया है, और उसमें एक गुण है मार्दव। मार्दव का मतलब होता है हृदय की कोमलता, सॉफ्ट हार्टेडनेस। तो ये तो एक देवता का गुण है, एक भक्त का गुण है, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। लेकिन उसके बाद ही भगवान कृष्ण जो है उसके अध्याय के 4 श्लोक में असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि वो किस तरह के होते हैं, उनका हृदय कैसे होता है। भगवान बता रहे हैं उनका हृदय होता है कठोर, वो कठोर हृदय के होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं। तो असुरों का जो हृदय है वो कभी भी कोमल नहीं होता है। देखिए वसुदेव देवकी को कंस ने जो है कारागार में रख दिया, कारागार में रख दिया। और जब उग्र सेन ने भी विरोध किया इसका कि आपने गलत किया है, तो कंस ने क्या किया, उग्र सेन को भी उठा के जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया। तो आधुनिक समय में देखते हैं इसी तरह से अर्जुन ने भी, औरंगजेब ने भी ऐसा किया, औरंगजेब ने भी अपने पिता शाहजहां को जो है जेल में डाल दिया। तो ये सब जो है एक असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने पिता तक को नहीं छोड़ते हैं। जहां उनका स्वास्थ्य पूरा होता है तब तक तो वो कोमलता का प्रदर्शन करते हैं, जहां उनकी इंद्रियति रुक जाती है, जहां उनको भय उत्पन्न हो जाता है कि उनका नुकसान होगा, फिर वो कठोरता का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से द्वंद बना रहता है। लेकिन अर्जुन की भावना देखिए आप, सामने योद्धा खड़े हैं उनको मारने के लिए, उनके और जो है दया की भावना दिखा रहे हैं। कितना बड़ा गुण है देखिए अर्जुन का, है ना, इतने सारे योद्धा खड़े हैं। तो अब हिरण्यकश्यपु ने भी देखिए बहुत प्रयास किया था प्रहलाद महाराज को मारने का। हिरण्यकश्यपु का हृदय बड़ा कठोर था। और बाद में हिरण्यकश्यपु ने क्या विचार किया कि अब प्रहलाद को मारूंगा तो मैं ही मार पाऊंगा, तो तलवार उठा लिया उसने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, अपने पुत्र को ही मारने के लिए तैयार हो गया हिरण्यकश्यपु, जिसको वो बहुत प्रेम करता था पहले। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो अर्जुन का हृदय बड़ा कोमल है। और 16 अध्याय के उसी 16 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपका हृदय, आप चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि आप जो है देवी गुणों के साथ आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म आसुरी प्रवृत्ति में नहीं हुआ है, आपका जन्म ही बहुत देवी गुणों से हुआ है, आपके अंदर देवी गुण हैं, सारे देवताओं के गुण हैं, एक भक्त के गुण हैं। तो अर्जुन जो युद्ध करना चाह रहा है, या अर्जुन जो युद्ध का प्रोत्साहन दिलवाया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा, तो ये युद्ध जो अर्जुन कर रहे हैं किसी क्रोध के कारण नहीं है, किसी बैर भावना के कारण नहीं है, या किसी लाभ पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने के लिए नहीं है। ये तो अर्जुन जो कर रहे हैं, युद्ध करना चाहेंगे या युद्ध करेंगे, वो तो भगवान की श्री प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं, वो और किसी आशा से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त जो है अपने कर्तव्य में निभाते हुए भी संसार के द्वंद से जो है मुक्त रहता है। और लेकिन क्या होता है कि कभी कभी विशेष परिस्थिति में भक्तों को भी कठोरता का प्रदर्शन करना पड़ता है। अब युद्ध जब करेंगे उसमें बिल्कुल कोमल हृदय तो होगा नहीं, जब किसी को मारेंगे तो नहीं, किसी को जब किसी को बाण चलाएंगे अर्जुन, तो उस समय हृदय तो कोमल होगा तो कैसे होगा, तो उसमें तो कठोरता का कई बार प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन ने विचार किया कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से मेरे गुरुजन हैं, तो उसको कैसे मारे हैं, इन्होंने हमें सिखाया बचपन से सब कुछ सिखाया, ये हमारे गुरु रहे हैं, पितामह हैं, और उनके बारे में बाण चलाऊंगा। अर्जुन इस प्रकार उनके हृदय में दया की भावना है, कोमलता का लक्षण है, कोमल हृदय उनका लक्षण है, उनके उनके उनका सद्गुण है। तो लेकिन कई बार भक्तों को इस प्रकार कठोरता का प्रदर्शन करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब प्रचार में जाते हैं तो मैं शेर की तरह होना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ कैसे होना चाहिए, मेमने की तरह होना चाहिए, भक्तों के समाज में शेर शेर नहीं बनना चाहिए कि भक्तों के ऊपर भी हम धड़ाते रहें घुराते रहें, है ना। लेकिन जब प्रचार करने जाते हैं तो निर्भीक होकर प्रचार करना, हमें भयभीत नहीं होना है, ये सोच के नहीं नहीं ये माया कहीं हमें पकड़ ना ले हम प्रचार करना बंद कर दें, नहीं, हमें प्रचार करना होगा, निर्भीक होकर प्रचार करना होगा, शेर की तरह घुर्राते हुए जो है हमें प्रचार करना है। लेकिन जब भक्तों के समाज में आते हैं, हमें मेमने की तरह विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए, सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए भक्तों के समाज में रहना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्तों के साथ मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उन्हीं को ही मारने का प्रयास कर रहे हैं और बाप में वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं और भाग जाते हैं जब प्रचार करने के लिए तो वहां बिल्कुल बिल्ली बन जाते हैं, चूहा बन जाते, होता ही होता है ऐसे कई बार कि भक्तों के साथ तो हम बहुत चौड़े हो जाते हैं, भक्तों के साथ हम लोग वाद विवाद करते हैं, तर्क बुद्धि रखते हैं, लेकिन जब भाग जाते हैं प्रचार करना होता है वहां मुंह खुलता ही नहीं है, कहां गई वहां की वीरता, कहां गई आपकी पवित्रता, इसलिए अगर हमें पवित्रता दिखानी ही है, अगर वीरता का प्रदर्शन करना ही है, कठोरता का प्रदर्शन करना ही है, तो हमें प्रचार में सफल होना चाहिए, वज्र के समान होना चाहिए, थंडरबोल्ट की तरह होना चाहिए, तब प्रचार में सब जैसे शिला प्रभुपाद है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोगों को वैष्णवों से सीखना चाहिए, नाचार्यों से सीखना चाहिए। तो अर्जुन जो है बहुत कोमल हृदय के, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन्होंने अपनी कठोरता का भी प्रदर्शन किया, और कितने सारे योद्धाओं को मारा अर्जुन ने, एक था महारथी थे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कंस जो है इसी तरह से बहुत अच्छे से प्रारंभ में देवकी के साथ उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, लेकिन भाग मुझे कंस को पता चला कि आठवीं संतान जो है कंस के वध का कारण बनेगी, मृत्यु का कारण बनेगी। तो कंस ने वसुदेव देवी को कहा डाल दिए, कारणार बना दिया। कितना तेज है देखो, कितना देखो स्वार्थी है कंस, कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने अपनी बहन को ही जो है पकड़ के जेल में डाल, वो तो मारने वाला था देवकी को, विवाह हुआ था अभी अभी वसुदेव जी के साथ, और खुद रथ साथ कर ले जा रहा। देखिए कितना स्नेह है कि नहीं, खुद जो है रथ चलाकर सारथी बन के जा रहा है कंस। तो प्रेम तो था, स्नेह तो था, लेकिन स्वार्थ भरा स्नेह था। जहां पता चला आकाशवाणी हुई कि आठवीं संतान जो है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसी समय जो है देवकी के केश पकड़ लिया और मारने के लिए तैयार हो गया तलवार से। वसुदेव जी ने प्रवचन के द्वारा उनको शांत किया। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने जो है उस परिस्थिति के अनुसार जो अपनी बुद्धि का उपयोग किया, उनको बहुत कोमल शब्दों में वसुदेव जी ने कंस को शांत किया। तो हिरण्यकश्यप जो है उसको भी इस तरह से क्रोध आया। पहले तो उसने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाया हुआ था, बेटा तुमने क्या सीखा गुरुकुल में बताओ। तो गुरुकुल में तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या सीखा है, पातम ग्रहम दकूपम, है ना। उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये जो गृहमेदी वाला जीवन है, जिसमें शोक और गृहस्था जीवन है, ये तो अंधे कुएं के समान है जिसे पानी भी नहीं है। ऐसे जब बोला हिरण्यकश्यप ने सुना, क्या संस्कृत में क्या बोल रहा है, क्षण और अमर क्या सिखाया तुमने इनको, ले जाओ इनको ठीक से शिक्षा दो। तो क्षण अमर घबरा गए, उन्होंने सोचा कि शायद कोई वैष्णव गुप्चर बन के तो नहीं आए यहां पर प्रीचिंग कर रहे हैं हमारे गुरुकुल में। तो क्षण अमर ले गए घबरा के, प्रहलाद महाराज को पहुंच सिखाने का प्रयास किया, सिखाओ उसको पॉलिटिक्स, सिखाओ इसको, सिखाओ आर्थिक विकास, सिखाओ सिखाओ तो कैसे अच्छा से अच्छा असुर बना जाता है, राक्षस कैसे बना जाए, क्या बोल रहा है। तो पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने वही प्रीचिंग शुरू कर दी गुरुकुल में। प्रहलाद महाराज जब फिर से वापस आए छुट्टियों में, बोले कि अब बेटा बताओ तुमने क्या सीखा। तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद महाराज का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सीखा है कि भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो ऐसा जो बोला कि बहुत प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो इस तरह से नर्मदा भक्ति से भगवान की सेवा करता है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। देखिए प्रहलाद महाराज को भय नहीं है बिल्कुल, हिरण्यकश्यप से इतने भयभीत थे, पूरे ब्रह्मांड में जो अनेक देवी देवता थे, ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़कर सभी देवी देवता घबराए हुए, इतने भयभीत थे हिरण्यकश्यप से। लेकिन प्रहलाद महाराज के गोद में बैठे उनको भय नहीं है, वो बोल रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हिरण्यकश्यप का हृदय फिर से कठोर हो गया, फिर से आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई और उठा के फेंक दिया प्रहलाद महाराज का गोद। देखिए ये होता है, जहां पता चलता है कि मेरा जीवन खतरे में है, जहां इंद्र तृप्ति में रुकावट आती है, वह असुर जो होते हैं वो अपने स्वजनों को भी बख्शते नहीं है, उनको भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार लेकिन भगवान श्री राम भी हम देखते हैं कि रावण के साथ बहुत कठोर थे भगवान श्री राम, और उन्होंने जो है युद्ध में किस तरह से मारा था भगवान राम ने। भगवान राम की लीला भी अद्भुत लीला है, और इस लीला हम देखते हैं कि दो केवल नर थे, यानी भगवान नर रूप में थे और बाकी सब वानर थे, दो नर थे और बाकी सब वानर थे, और वे था वानर की सेना लेके गए थे रावण को आक्रमण। दे रावण के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी, देखिए कि बुंदरों ने जो है रावण की लंका को जला दिया, हनुमान जी ने लंका को जला दिया, वानरों ने जो है उनकी सेना को परास्त कर दिया। बताइए ये रावण के लिए कितने बड़े अपमान की बात होगी, बेइज्जती की बात होगी। फिर रावण बड़ा क्रोधित हो गया था, लेकिन रावण तो सब भयभीत थे। आज वो बंदरों से नहीं लड़ पा रहा है, उनकी सेना बंदरों से नहीं लड़ पा रही। भगवान राम ने जो बाण चलाया रावण की नाभि में, रावण की मृत्यु हो गई। लेकिन जब रावण मर गया तो विभीषण को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, भगवान ने कहा कि जाओ रावण की अंत्येष्टि करो और उनका बड़ा सम्मान से अंत्येष्टि करना, बिल्कुल आदर देते हो। तो ये देखिए वहां पे कोमलता का फिर से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त जो है आवश्यकता के अनुसार कठोरता का प्रदर्शन करता है, लेकिन ये नहीं कि उसका हृदय हमेशा के लिए कठोर रहता है। स्वाभाविक रूप से वो हृदय से कठोर नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता जहां पड़ती है वो कठोरता का प्रदर्शन करता है। जहां देखता है कि असुर लोग जो है और विषयी लोग जो है भगवान की निंदा कर रहे हैं, भक्तों की बुराई कर रहे हैं, वहां भक्त जो है फिर से कठोर होता है कि नहीं। लेकिन जहां पर वो देखते हैं कि यहां भक्तों की सेवा चल रही है, भगवान की सेवा चल रही है, वहां भक्त बिल्कुल नम्र हो जाते हैं और कोई भी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। स्वजन, यहां पर स्वजन का हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वजन आए सुना, स्वजनम, स्वजनम का मतलब यह है अपने जन, अपना व्यक्ति। स्व मतलब अपना और जन का मतलब व्यक्ति, अपना व्यक्ति। हम बोलते हैं ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे जो है स्वजन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी रक्षा करेंगे। कोई किसी के साथ नहीं रहता, एक दिन सबको छोड़ना पड़ता है, शरीर भी छोड़ना पड़ता है, परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो शरीर ही आपका नहीं है तो परिवार आपका कैसे हो गया, तो एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। स्वजन इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है, समय आने पर सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे कितने परिवार हम बदल चुके हैं, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण असली स्वजन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ भगवान जो है परमात्मा के रूप में हमेशा वास करते हैं और जीवात्मा के साथ हर प्रत्येक योनि में जो है यात्रा करते हैं। तो असली स्वजन कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, है कि नहीं। जो हम जिनको हम असली अपना मानते हैं, जिनको हम स्वजन मानते हैं, वो वास्तव में पराये हैं, और जिनको हम पराया मानते हैं परम भगवान श्री कृष्ण को, वो वास्तव में हमारे असली स्वजन। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और इस भाव से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, और इसलिए परम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं। चाणूर, मुष्टिक, बकासुर, अकासुर, जितने भी असुर थे या असुर पूतना, इन सब ने भगवान कृष्ण को मारना चाहा। कंस ने कृष्ण को मारना चाहा, रावण ने भगवान को मारना चाहा, हिरण्यकश्यपु ने भी भगवान को मारना चाहा, सब ने भगवान को मारना चाहा, इन राक्षसों ने, इन असुरों को असुर ने मारना चाहा। लेकिन क्या हुआ परिणाम, क्या हुआ कि ये सब मारे गए। तो कहने का मतलब है अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो हम प्रसन्न होंगे। तो इस भाव से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें किसी प्रकार की समस्या संसार में नहीं आए। अर्जुन की अशांति का कारण क्या है? अर्जुन की अशांति का कारण ये है कि वो सोच बैठा है कि स्वजन है, कि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं। लेकिन असली स्वजन तो उनके रथ में बैठे, उनके सारथी के रूप में, जो उनके लिए उनका रथ चलाने के लिए तैयार है, जो त्रिभुवन के स्वामी है परम भगवान श्री कृष्ण, उनके सारथी बनने के लिए तैयार है। उनको भूल कर आप कौन से स्वजनों की बात कर रहे हो जो सामने खड़े हुए हैं? सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि केवल 5 पांडव बचेंगे, सबके सब मारे जाएंगे। इतना कुछ हम सुनने पर भी, भगवद गीता में सुनने के बावजूद भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि कृष्ण हमारे हैं। हम वास्तव में हैं तो कृष्ण के और किसी के नहीं। हमारा असली संबंध अगर है तो भगवान से ही है, बाकी जितने भी संबंध है सब टूटे फूटे संबंध है, क्षण भर के संबंध है, सब यही के सब बिखर जाएंगे। इसलिए भगवदगीता का उद्देश्य यही है, भगवदगीता का सार यही है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण का गुणगान करें, उनके उद्देश्य को स्वीकार करें, उनके आदेश को स्वीकार करें, और अपना जीवन जो है कृष्ण भावना भावित बनाए। तब तो इस आंदोलन में आने को कोई फायदा है कि नहीं। नहीं तो यहां आकर भी हम लोग जो है अपने सज्जनों में फंसे रहेंगे और भूल जाएंगे अपने जीवन के लक्ष्य को, तो ये अच्छा नहीं है। तो कृष्ण ही हमारे वास्तव में असली सुहृद हैं, हमारे असली मित्र हैं, हमारे असली हितेशी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मिच्छति। तो कृष्ण को अपना स्वजन मानते हुए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बात की अनुभूति कब होगी हमें कि हम वास्तव में उनके असली स्वजन बन जाएं और संसार से हम लोग छुटकारा पाएं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, भक्त भी थे, योगी भी थे, कुछ हर तरह के लोग थे। हमने कहा भक्त भी थे और या चाणू मुस्लिम भी थे, उनकी सेना के लोग भी थे, हर तरह के लोग थे। मतलब कहने का मतलब है तरह तरह के लोग थे और सब जो अपने भाव के अनुसार देख रहे हैं, लेकिन जो भी है सब कृष्ण के सामने थे। उनकी योग्यता है, कुछ भी कह लीजिए, चाणू हो मुस्टिक हो, कृष्ण के साथ युद्ध करने का हमें तो मौका नहीं मिला। चाणू और मुस्टिक की स्थिति हमसे बेहतर नहीं लग रही आपको, लेकिन इसको प्रतिकूल कहते हैं कृष्ण भावना का अभ्यास, अनुकूल नहीं है ये। भक्ति राम सिंधु के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य चाणू और मुस्टिक बनना नहीं है या हिरण के सू बनना नहीं है। वो भी एक तरीका है कृष्ण भावना भावित होने का, लेकिन वो सही तरीका नहीं। तो वहां सब कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन कोई अनुकूल परिस्थिति अनुकूल भाव से था, कोई प्रतिकूल भाव। तो हमें तो माता यशोदानंद महाराज, वसुदेव जी, देवकी या उनके सखा एकत्र थे, ब्रजवासी थे या मथुरावासी थे, उनके भाव में हमें कृष्ण को याद करना चाहिए। और कोई प्रश्न? जी देखिए, आज की परिस्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन प्रहलाद महाराज का उदाहरण भी हमें देखना है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का कभी बुरा नहीं चाहा। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप कितने तरीके से प्रहलाद महाराज को मारना चाहा है कि नहीं, लेकिन हिरण्यकश्यप को जब वध कर दिया भगवान नरसिंहदेव ने, तो जानते प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते तो ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता को उद्धार कर दीजिए। आप बताइए, पहाड़ से फेंका गया, उनको सांपों के ढेर में फेंका गया, जहर पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, और हिरण्यकश्यप के वध के बाद प्रहलाद महाराज उनके उद्धार के लिए भगवान नरसिंहदेव से पूछने लगे। तो असली वास्तव में पुत्र का क्या होता है? पुत्र पू का होता नर्क होता है, पू नर्क का नाम है, और तरा मतलब जो संतान अपने माता पिता को नर्क जाने से बचाती है, वो है असली पुत्र। तो अगर आप कृष्ण भावना भावित होते हैं, अब आपने माता पिता का वैसे ही उद्धार कर रहे हैं। भगवान नरसिंह ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे संतान होती है उसकी 14 पीढ़ियां तर जाती है, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता ना करो, 14 पीढ़ियां तर गई तुम्हारी। प्रभुपाद कहते हैं वाई नॉट नरसिंह देव सेइंग 40 जनरेशन 100 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि 14 पीढ़ियां क्यों कह रहे हैं भगवान नरसिंह देव, 100 पीढ़ियां तर जाएंगी, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसा भक्त बनना पड़ेगा, फिर आपको उस लेवल का भक्त बनना पड़ेगा। लेकिन अगर उस लेवल के भक्त भी नहीं पड़े, तो अगर वे थोड़े लेवल के भी बने, अगर 40 लेवल के भी बने, तो 2 या 3 पीढ़ियां तो वैसे कर जाएंगे। अपने परिवार का उद्धार तो निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और समाज में रहते हुए हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हम यहाँ बता रहे थे कि स्वजन असली कृष्ण है, हमारे परिवार के सदस्य असली स्वजन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शिष्टाचार का भंग करें, मर्यादा का भंग करें, क्योंकि पूरा समाज भक्त को जो है देखता है तो ये देखते हैं ये कृष्ण भक्त हैं, तो ये समाज में श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो इनका व्यवहार इस तरह से है कि कृष्ण भक्त होकर झगड़ा कर रहे हैं घर में माता पिता से। ये कहते कृष्ण भक्त हैं, इनके सदाचारी कुछ है नहीं, आचरण ही कुछ ठीक नहीं है, हम क्यों जब करें, हम क्यों कृष्ण भक्त बने, हम भी कृष्ण भक्त बनने के बाद इस तरह से करेंगे। पहले ये भक्त नहीं था तो पांव छूता था रोज, अब भक्त बनने के बाद मुंह भी नहीं देखता है, कौन भक्त बनेगा बताइए? तो परिवार जो जुड़ने वाले हैं वो भी टूट जाए। तो भक्त का आचरण जो है सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, पूरे समाज के लिए उसको आचरण जो है स्थापित करना चाहिए, आदर्श स्थापित करना चाहिए, जिस तरह से भगवान श्री राम ने किया। भगवान श्री राम की लीला में मर्यादा देखते हैं, भाई के साथ कैसे होना चाहिए व्यवहार, माता पिता के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, एक शत्रु के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये भगवान राम ने दिखाया। इसी तरह से मर्यादा की भावना में रखनी चाहिए, लेकिन याद रहे जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, उस पर समझौता नहीं करना चाहिए। यह हमें ध्यान रखना इस बात, बाकी जो सामान्य शिष्टाचार उसका हमें पालन करना चाहिए। देखिए भक्ति मार्ग में जितना हम सहन करेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उतनी नम्रता आएगी। लेकिन जहां पर अपना अहंकार का प्रदर्शन करेंगे कि हम भक्त हैं, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले, तो कृष्ण हमसे कोसों मील दूर चले जाएंगे। भगवान को कभी प्रिय बात ये पसंद नहीं आती है कि उनका अपना भक्त जो है शिष्टाचार को भंग कर रहा है। ये भगवद्गीता की शिक्षा नहीं है, ये भगवान की शिक्षा नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ऐसा नहीं किया। जब उन्हें नर्मलीला की, भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया, कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया वसुदेव देवकी के साथ, या कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया नंद महाराज यशोदा के साथ कि उनका मर्यादा भंग कर रहे हो। लीला जरूर की होगी लेकिन शिष्टाचार का भंग नहीं किया। तो इस प्रकार जो है हमें सीखना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं धर्म भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए, किस तरह से मर्यादा का पालन कर रहे थे, आप चैतन्य चरणामृत पढ़िए। तो इस तरह से भगवान से हम शिक्षा ले सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जैसे जो वैष्णव हैं और वैष्णव समाज में कई भक्त हैं जो अच्छा आचरण रखते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि समाज में रहते हुए भी हमें कैसे आचरण का पालन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और कोई प्रश्न है? देखिए देवताओं के एक देवता को भी पूजा करता है तो उस देवता के पास जाएगा, लेकिन सभी देवताओं की पूजा कर रहा है इसका मतलब वो अभी उसकी श्रद्धा को स्थिर नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता है किसकी पूजा करनी है, कंफ्यूज है, खिचड़ी बनी हुई है, कहीं नहीं जाएगा। फिर अब कहीं जाएगा जिसका चिंतन करेगा हम काल में वहां जाएगा। खिचड़ी भक्ति नहीं चलती है, देवता लोग बेवकूफ नहीं है। ये क्या है, आज मेरे पास आ रहा है कल उनके पास जा रहा है, ये कोई दुकान खोलना है, ये कोई मॉल सुनना है कि आपने यहाँ नहीं अच्छा लगा दूसरे मॉल में चले जाए, ऐसा नहीं है। हाँ जी, भक्त जो सताते हैं वो नर्क जाते हैं, जो वैष्णव अपराध कर रहे हैं और वैसे अपराध से छुटकारा नहीं पाते हैं तो फिर उधर नर्क जाना ही पड़ेगा। उद्धार होगा जब हम भक्ति करेंगे, वैष्णव को दुखी करके नहीं उद्धार होगा कभी। वैष्णव को दुखी करके, उनके ऊपर अत्याचार करके, उनके प्रति अपराध करके फिर तो नर्क जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप तो भगवान के पार्षद हैं, जैन देव से एक है, खुद वापस वैकुंठ धाम चले भी गए, खुद श्राप मिला था उन्होंने, तीन जन्म का श्राप स्वीकार किया था, उसके बाद वो वैकुंठ धाम में फिर से जय विजय द्वारपाल हो, वो तो लीला है भगवान। लेकिन उसको क्या दिखाया जा रहा है कि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो फिर हिरण्यकश्यप बनना पड़ता है हमें, यानी हमारे मोटे की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। फिर बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों को दुखी करने से पहले, क्योंकि वो भक्त किसके हैं, वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आपके भक्त नहीं है। आपके दोस्त साथ में रहते हैं, वो आपके साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन हैं किसके भक्त वो कृष्ण के भक्त हैं। तो कृष्ण बड़े दुखी होते हैं, मेरे भक्त को दुखी कर रहा है, मेरे भक्त के साथ ऐसे बात कर रहा है, मेरे भक्त का अपमान कर रहा है, मेरे भक्त के साथ अपशब्द बोला है, तो इसको मेरे सामने मत देखो। भगवान से बहुत दुखी होते हैं ऐसे सुपर्ण भक्तों से। गंभीरता से कहते हैं भक्ति का अभ्यास करें, कलयुग में इतना कलह है, भक्तों के संग रहेगा, भक्तों के संग रहेंगे तो कलयुग नहीं आना चाहिए। कलयुग क्यों आ रहा है, भक्तों के संग में रहेगा, अगर चार नियमों का भंग होगा तो कलयुग प्रवेश करेगा। भक्तों के समाज में भी कलयुग आ सकता है अगर चार नियम भंग हो गए, कल ही फिर सर पर नाचेगा यहाँ पर डांस करेंगे सर के ऊपर, अगर चार मिनट तोड़ेंगे हरिनाम का जप बंद करने हैं। अगर कोई ध्यान पूर्वक 16 माला का जप कर रहा है, कम से कम चार नियमों का पालन कर रहा है, तो कली का मतलब ही नहीं है भक्तों के समाज में। कहाँ से कली आ गया? कली भाग है, जहाँ भक्तों का स्थान नहीं है वहाँ कलियुग है, यहाँ कोई कलियुग नहीं है, कलियुग का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, भगा दिया गया कलियुग को। बहुत जगह है गुड़गांव में कलियुग के लिए, यहाँ में मंदिर में कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अगर चार नियम टूटेंगे तो कल यहाँ भी प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर कोई स्पेशल फैसिलिटी हमारे, नियम तो नियम है, समझौता कहीं नहीं होता है, लेकिन हम लोग सावधान रहना चाहिए। तो अगर चार नियमों का पालन करते हैं ध्यान से, 16 माला का जप करते हैं, प्रोसेस जो दिया गया है प्रभुपाद ने दिया है उसको फॉलो करते हैं, सदैव भक्तों के संग में रहिए जितना अधिक से अधिक हो सके। जब भक्तों का संग ना मिले तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, इस तरह से हमेशा भक्तों के संग रहिए। हाँ जी, किसको? हाँ हाँ, गोवर्धन लीला, गोवर्धन की। आज भी वैसे ही करिए, वो पूछ रहे हैं कि भाई उस समय तो इंद्र की पूजा बंद करा दी कृष्ण की याद में, गोवर्धन की पूजा करो, इन गायों की सेवा पूजा करो, तो आज इस शिक्षा कैसे स्वीकार करें? आज भी ऐसे ही करो, आज भी वैसे ही करो और आगे भी वैसे ही करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी की पूजा करो, यहाँ पर भी गोवर्धन शिला है, यहाँ नहीं है, मंदिर में है, दिल्ली मंदिर में है। तो क्या फिर ब्रज में चले जाएंगे? ब्रज जाने दूर थोड़ा है, शिला नहीं ला सकते वहाँ, शिला ला सकते हैं जब, शिला लाने का तरीका अलग है, खैर वाला ही प्रश्न है। शिला अगर लाना चाहते हैं गोवर्धन शिला, तो या तो स्वयं ब्रजवासी अपने हृदय से आपको दे, गुरु की उसमें अनुमति की आवश्यकता है सबसे पहले, तो सबसे बड़ी बात है आपके जो दीक्षा गुरु हैं जिससे आपने मंत्र लिया है उनसे आपको अनुमति लेनी चाहिए सबसे पहले। मन गढ़ तरीके से कभी गोवर्धन शिला नहीं लाना चाहिए, अपराध लग जाएगा, अनर्थ होगा उससे, क्योंकि और साथ में हरिवंश शिला से यहाँ तक बताया कि उतनी मात्रा में कुछ सोना या चांदी भी रखना पड़ता है, जितनी मात्रा जितना वजन होता है गिरिराज जी का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुरु की आज्ञा चाहिए, गुरु की अनुमति चाहिए, और ब्रजवासी अगर हृदय से दे तब तो ठीक। तो एक बार हमने पूछा था किसी से, आइंद्र प्रभु से पूछा था हमने गोवर्धन शिला के लिए, तो उन्होंने पूछा आपको क्यों चाहिए गोवर्धन शिला, तो हमने वो कहा कि सेवा करने के लिए, तो उन्होंने कहा आप क्यों सेवा करना चाहते हैं, बोले तो गिरिराज जी की प्रसन्नता के लिए, तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ गिरिराज जी तो प्रसन्न है ब्रज में, आपको क्या लगता है आप सब दिल्ली जाके और खुश हो जाएंगे? आप सुन रहे हो बात को, तो हमें देखना है कि कृष्ण कहाँ प्रसन्न रह सकते हैं, उनको वहीं पर उनकी सेवा होनी चाहिए, यानी हमारी प्रसन्नता के लिए हम सेवा करें, वो फिर भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। गिरिराज जी बिल्कुल प्रसन्न है, बहुत खुश हैं वो ब्रज में रहकर, हमारे साथ आगे और खुश होंगे क्या? हमें नहीं लगता शायद इतने खुश हो गए हमारे साथ आगे। जय जगन्नाथ। तो हम सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, हमें भक्ति का मतलब होता है हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उनको क्या अच्छा लगता है हमें देखना है, ये नहीं हमें क्या अच्छा लगता है। ठीक है, 5 मिनट कीर्तन करें। हरे कृष्ण। देखिए प्रोसेस है सारा, गिरिराज जी परिक्रमा करके फिर भक्ति भी तो आपको करनी पड़ेगी ना, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब नहाने के बाद फिर से मिट्टी डाल लो ठीक नहीं है, एक बार कर दिया ठीक है, लेकिन फिर आपको फिर वो भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर हम गिरिराज परिक्रमा करके जब बंद कर दें, भक्तों का संग छोड़ दें, तो फिर फायदा किया है? ये तो फिर दिखावा, गिरिराज जी भी समझते हो बेवकूफ नहीं है। लेकिन गिरिराज जी देखेंगे परिक्रमा करके अब भक्ति में गंभीर हो गया है, तब गिरिराज जी हमारी सहायता भी करेंगे, फिर समय आने पर इस जन्म में या अगले जन्म में धाम जाने का भी अवसर मिलेगा। पूछ के लाया था। हमने तो बता दिया आपको सब कुछ, हम आप फैसला करें। ठीक है सर, ठीक है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री सुभद्रा महारानी की, श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी।